सुर्खियों में
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत समुद्री सप्ताह 2025 समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मालिनी वी शंकर और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला।
इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 का आयोजन इस समय मुंबई में हो रहा है। 27 अक्टूबर को शुरू हुए इस आयोजन का आज तीसरा दिन है। इसका समापन 31 अक्टूबर को होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के अंतर्गत मैरीटाइम लीडर्स कॉन्क्लेव को संबोधित किया और ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता की। इस आयोजन को दुनिया का सबसे विशाल समुद्री सम्मेलन कहा जा रहा है, जिसमें समुद्री क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के प्रमुख हितधारक भाग ले रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मालिनी वी शंकर मौजूद हैं। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
धन्यवाद।
चर्चा की शुरुआत में हम यही जानना चाहेंगे कि इंडिया मैरीटाइम वीक क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई थी और इस साल का आयोजन क्यों विशेष है।
सन 2016 में पहले भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि हमारे मैरीटाइम सेक्टर इतना बड़ा है, मशहूर है, हमारे ऐतिहासिक टाइम से, लोताल के टाइम से मैरीटाइम सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, जितना अटेंशन देना चाहिए ये मैरीटाइम सेक्टर को उतना नहीं दे पाए। तो 2016 में पहले बार एक इन्वेस्टमेंट समिट लिया था, उसके बाद दो बार हुआ और 2023 में हुआ मुंबई में, और जिसमें इन्वेस्टमेंट और रिफॉर्म्स उसके बारे बातचीत किए। ये 3-4 साल में मैरिटाइम सेक्टर का बहुत बड़ा स्ट्रेस माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है और एक जियो पॉलिटिक्स देते हैं और टेक्नोलॉजी बदल रही है और हमारा एस्पिरेशंस भी, आकांक्षाएं भी बढ़ रहे हैं। तो ये सब दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया से शेयर करने के लिए ऐसा एक बड़ा सम्मेलन की जरूरत थी। 2025 में बहुत बड़े स्केल में ये इंडियन मैरिटाइम वीक आयोजित किया गया है। ये क्यों कहते हैं सबसे बड़ा है, 85 कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट किए हैं, छोटे छोटे कंट्रीज से, छोटे आइलैंड से लेके, छोटे द्वीप से लेके, बड़े बड़े कंट्रीज जो मैरिटाइम सेक्टर में बहुत आगाऊ हैं, जैसे नॉर्वे हैं, जैसे कोरिया है, उनके लोग भी इधर आए थे, उनके प्रतिनिधि आए थे और इंडस्ट्री भी भाग लिया और एमओयू साइन किए थे। 600 से ज्यादा एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी है, फिर बिजनेस टू बिजनेस भी है, गवर्नमेंट टू बिजनेस सब हुआ है और उसका कुल एस्टिमेट है कि 600 एमओयूज वर्थ अबाउट 12 लाख करोड़ रुपीस, इसलिए ये सब बड़ा माना जाता है।
जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, आप भी वहीं थीं, आपने प्रधानमंत्री का पूरा संबोधन सुना, क्या खास बातें कहीं प्रधानमंत्री ने, अगर आप हमारे श्रोताओं को इस बारे में बता सकें।
उन्होंने बहुत सारे डेटा दिए हैं, फिगर्स दिए हैं कि पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ ये मैरिटाइम सेक्टर में। का उदाहरण है पोर्ट कैपेसिटी जो 1400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम था, वो दुगना हो गए हैं 10 साल में। कार्गो हैंडलिंग जो थे वो भी दुगना हुए हैं और शिप बिल्डिंग के लिए 70,000 करोड़ का एक सब्सिडी स्कीम लागू किए हैं। और इसके अलावा इंग्लैंड वाटरवेज हैं जो हमारे नदियों में बोट चलाते हैं और एक जमाने में कार्गो भी जाती थी, पैसेंजर भी जाते थे, वो सब थोड़ा मंद हो गया था। अभी 1-2 साल में ये 700% बढ़ाई हो गई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि 5 एक्ट्स हैं जो बहुत महत्व एक्ट्स हैं मैरिटाइम सेक्टर के लिए, वो 5-6 एक्ट बहुत पुराने थे, अब डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं, दुनिया बदल गई है, उसके मुताबिक वो सारे कायदा को एक ही साल में, एक ही पार्लियामेंट्री सिटिंग में जो 5 साल से 3 साल से उसका प्रयत्न हो रहा है, इस साल ये 5-6 कायदा के रिफॉर्म और नूतनीकरण किया गया है, नवीन एक्ट आए हैं।
बिल्कुल, आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री ने आज उन कानूनों को बदलने की बात कही जो कॉलोनियल एरा में, यानी अंग्रेजों के समय जो इस देश में लागू हुए थे, तो आइए पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
इस साल भारत के मैरिटाइम सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि भारत इस समय तेजी के साथ समुद्री क्षेत्र में विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये साल इस क्षेत्र के लिए बेहद खास रहा है।
21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। खासकर साल 2025 भारत के मैरीटाइम सेक्टर के लिए बहुत अहम साल रहा है। मैं इस वर्ष की कुछ खास उपलब्धियों का जिक्र आपके बीच करना चाहता हूं। विजिंजम पोर्ट के रूप में भारत का पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट हब अब ऑपरेशनल हो चुका है। कुछ समय पहले ही दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर वेसल वहां पहुंचा। ये हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण था। साल 24-25 में भारत के मेजर पोर्ट्स ने अब तक का सबसे अधिक कार्गो हैंडल करके भी नया रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, पहली बार किसी इंडियन पोर्ट ने मेगावाट स्केल इंडिजीनियस ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी शुरू की है।
जी मालिनी जी, आपकी टिप्पणी इस पर।
जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, ये विरंजम जो पोर्ट है वो नया पोर्ट है केरला के नॉर्दर्न कोस्ट में, तो अभी एक साल भी नहीं हुआ, पिछले एक साल हुआ, अगस्त 2024 में शुरू किया और ऑलरेडी इट इज रिसीव्ड द बिगेस्ट कार्गो शिप्स, ऑलरेडी ट्रांसशिपमेंट इज हैपनिंग। वो बदलने वाला है, जो सारे मदर शिप्स जो कोलंबो जा रहे थे वो अभी विरंजम के उधर ट्रांसशिपमेंट बहुत बड़े एस्पेक्ट में हो सकता है। विरंजम जो है, यू नो द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज गॉट द वन ऑफ द मोस्ट डेंसेस्ट शिप ट्रैफिक। बहुत सारे शिप्स ये वेस्ट कोस्ट के जाते हैं और विरंजम इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, तो ये सब शिपिंग के लिए, ट्रेड के लिए इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द सेक्टर।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बड़े जलपोतों को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा देती है।
भारत ने अब लार्ज शिप्स को इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा भी दे दिया है। ये पॉलिसी डिसीजन इस कार्यक्रम में मौजूद सभी शिप बिल्डर्स के लिए नए रास्ते खोलेगा। इससे आपको फाइनेंसिंग के नए विकल्प मिलेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट घटेगी और क्रेडिट की सुविधा आसान होगी। और साथियों, इस रिफॉर्म को गति देने के लिए सरकार भी लगभग 70,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेगी। इससे डोमेस्टिक कैपेसिटी बढ़ेगी, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड शिपयार्ड का विकास होगा, एडवांस मैरीटाइम स्किल तैयार होगी और युवाओं के लिए लाखों जॉब जनरेट होगी।
70,000 करोड़ रुपए का निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का दर्जा बड़े जलपोतों को। जी मालिनी जी, आपकी टिप्पणी इस पर।
शिपिंग सेक्टर का जब शिपयार्ड से बात करते हैं, उनका एक ही ग्रीवेंस है कि उनको फाइनेंस आसान से मिलती नहीं है और जो फाइनेंस मिलता है, लोन्स मिलते हैं, उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू इंटरनेशनल, जो बाकी लोगों को जो दुनिया में मिलता है उससे बहुत ज्यादा है, इसलिए उनको अफोर्डेबल होते नहीं है। और दूसरा है, उनको प्रोडक्शन भी जो स्पेयर पार्ट्स है, जो मेन पार्ट्स है, उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो दो चीज भारत सरकार ने निर्णय लिया है, एक तो है शिप को इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाने से, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जितना सहूलत मिलता है बैंक से और सरकार से वो सब मिलेगा, फाइनेंसिंग मिलेगा। और ये 70,000 अगर आप शिपिंग सेक्टर से पूछे, वो 70,000 करोड़ बहुत कम है, मगर ये पहला टप्पा है, तो इसका सक्सेस होगा तो इससे ज्यादा भी सरकार देने को तैयार होगा, क्योंकि सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया में सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग देश होना चाहिए। शिप बिल्डिंग अभी पहले वेस्टर्न कंट्रीज में होते थे, अब ज्यादा से ज्यादा शिपयार्ड शिप बिल्डिंग कोरिया, जापान और चाइना में होते हैं, तो वी शुड बी वन ऑफ द बेस्ट टॉप 3 एटलीस्ट। इसके लिए ये सारे जो इनिशिएटिव्स हैं वो अच्छा है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में एक और खास बात कही कि उनकी सरकार समुद्री क्षेत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों यानी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के क्षमता विस्तार का भी उल्लेख किया जो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। आप इन उपलब्धियों को कैसे देखती हैं? लेकिन आइए पहले प्रधानमंत्री जी को सुनते हैं और फिर इस पर आपकी संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे।
जेएनपीटी में भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल फेज टू भी शुरू हो गया। इससे इस टर्मिनल की हैंडलिंग कैपेसिटी दोगुनी हो गई है और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बन गया। ये भारत के पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़े एफडीआई की वजह से संभव हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में जो सबसे बड़ा एफडीआई है पोर्ट सेक्टर में, उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। आपकी टिप्पणी जी।
जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो सबसे बड़ा, इंडिया में सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अभी वाधवान करके पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट प्लस महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र मैरिटाइम बोर्ड दोनों मिलके ये वाधवान पोर्ट जो बना रहे हैं वो 75,000 करोड़ उसका एस्टिमेट है। और वो जब आएगा तो वेस्ट कोस्ट विल बी द बिगेस्ट मैरिटाइम डेवलपमेंट इन द कंट्री एंड प्रोबेबली इन साउथ एशिया।
बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही कि आज जब दुनिया संघर्षों और युद्ध के दौर से गुजर रही है तब विश्व को एक ऐसे देश की तलाश है जो तटस्थ हो, और भारत आज ऐसे ही लाइट हाउस की भूमिका मजबूती के साथ निभा सकता है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
When the global seas are rough, the world looks for a steady lighthouse. और भारत ऐसे लाइट हाउस की भूमिका को बहुत मजबूती से निभा सकता है। ग्लोबल टेंशन्स, ट्रेड डिस्ट्रप्शंस और शिफ्टिंग सप्लाई चेन्स के बीच भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, पीस और इंक्लूसिव ग्रोथ का प्रतीक है।
डॉक्टर मालिनी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर?
The words of the Prime Minister just prove that India is ready now and committed to ensure that India will become one of the best maritime nations in the world. It will, in all respects, ports, shipping and waterways, as well as human capacity building also. Itne sare cheez, I think we have not done in the last few years. Jaise aur ek cheez Pradhan Mantri ne bataya, climate change hai to greenhouse gases kam. नेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि वो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब दूषित जो गैसेस हैं उसको कम करना है। इसके लिए आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज हाइड्रोजन मिशन, और उसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी, ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने के फैसिलिटी ट्यूटिकॉरन पोर्ट में शुरू किया गया है और इतर जो दो तीन पोर्ट्स है उसमें भी शुरू करने वाले हैं, जैसे दीनदयाल पोर्ट है, एंड ऑल लुकिंग टू द फ्यूचर। दिस इज द फ्यूचर एंड इफ वी कैन अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स वी विल बी द लीडिंग लाइट, लाइक प्राइम मिनिस्टर सेड, लाइट हाउस, मैरिटाइम लाइट हाउस ऑफ द वर्ल्ड।
जी बिल्कुल डॉक्टर मालिनी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में कहा कि भारत जिस गति के साथ आगे बढ़ रहा है मैरिटाइम सेक्टर में, तो हम उम्मीद करते हैं कि 2047 तक जो सरकार का विजन है तब तक हम इस क्षेत्र में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेंगे। आप हमसे जुड़े और अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे भारत समुद्री सप्ताह 2025 समुद्री क्षेत्र में नेतृत्व के लिए तैयार भारत पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर मालिनी वी शंकर और आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
सुर्खियों में